ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा। ओम नमो शिवाय। तो फ्रेंड्स, आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों को जो पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा चैप्टर 17 अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग डिविजन्स ऑफ फेथ पे हम बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने समझा था इस चैप्टर में कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। जैसे हमारे गुण तीन प्रकार के होते हैं ना, प्रकृति के तीन गुण होते हैं ना, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। जैसे हमारे गुण होते हैं, वैसे ही हमारी श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। उसके अकॉर्डिंगली ही हमें चीजें पसंद आती है। देखो, इन तीन गुणों के अकॉर्डिंगली ना हम एक नेचर बना लेते हैं अपनी, है ना। मतलब हम चूज कर लेते हैं इन गुणों को पहले अपने अपने स्वभाव के अनुसार। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम इन गुणों को चूज कर लेते हैं पहले। जो चीजें हमें पसंद होती है, हम उनमें एक्चुअली इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें चूज करते हैं। जब हम इन गुणों को चूज कर लेते हैं, तो फिर ये गुण हमारी एक्टिविटी, हमारी श्रद्धा को चूज करते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही हमें फिर चीजें पसंद आती हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे हम कोई कर्म करें, चाहे हम यज्ञ करें, दान करें या तपस्या करें। ये सब हमारे गुणों के ऊपर निर्भर करता है। हम समझ चुके हैं, अगर तामसिक गुण किसी का बड़ा हुआ होगा तो वो क्या करता है, वो भूत प्रेतों की पूजा करेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करेगा। उसको लगेगा कि मेरे को ये चीज नहीं मिली, दूसरों को कैसे मिल गई, तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करता है। फिर रजोगुण वाले क्या करते हैं, जिनमें डिजायर्स होती है बहुत ज्यादा, वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना। जैसे पावरफुल लोगों की पूजा करते हैं ये लोग, जैसे रावण और हिरण्यकश्यपों की पूजा करते थे ये लोग, है ना, किसी भी पावरफुल व्यक्ति की पूजा कर लेते हैं। फिर जिनमें सात्विक गुण प्रोमिनेंट होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर हमने 8th, 9th, 10th वर्स में हमने भोजन के बारे में समझा कि भोजन के भी तीन प्रकार है। जैसे गुणों के तीन प्रकार है, जैसे श्रद्धा के तीन प्रकार है, वैसे भोजन के भी तीन प्रकार है। मतलब भगवत गीता बुक हमें देखो खाली स्पिरिचुअलिटी की हाई लेवल की बातें नहीं बताती, बल्कि छोटे छोटे बातें भी हमें बताती हैं कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, हमें कैसे यज्ञ करने चाहिए, हमें कैसे दान करने चाहिए, जो है ना आगे श्लोक आएंगे, हमें कैसे तपस्या करनी चाहिए। मतलब हम अपनी हर एक चीज हमें कैसे करनी चाहिए, हमें सब कुछ भगवत गीता के द्वारा हमें गाइड किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मानना नहीं चाहते इन चीजों, हम विश्वास नहीं करते, हम लोग शक करते हैं, है ना, कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना। सब बात तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा होगा या नहीं होगा। अरे, आप सुनोगे नहीं, अगर आप चलोगे नहीं तो आप इसको एक्सपीरियंस कैसे कर पाओगे। तो भगवत गीता में केवल हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं होती, ग्राउंड लेवल की भी बातें होती हैं, है ना। छोटी छोटी चीजें हमें बताई जाती हैं। देखो फ्रेंड, सीधी बात है, इसमें भोजन के बारे में बताया जा रहा है, तो हमें ये बात समझनी है कि हमारे खराब खाने पीने से ना हमारा मन खराब हो जाता है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा ना, जिस दिन हम खाना अच्छा खाते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं, तो हमारा मन खुश खुश रहता है, है ना। और हमारे मन खराब होने से क्या हो जाता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और अगर हमारे विचार खराब होंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे। सिंपल, हमारे विचारों से ही हमारे कर्म बनते हैं, जो हम सोचते रहते हैं अंदर, जो विचार होते हैं हमारे, है ना। इसलिए तो बोलते हैं कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा पढ़ो। तो अगर हमारे विचार खराब होंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे, है ना। कर्म खराब होंगे तो हम कुछ भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, ना मटेरियल वर्ल्ड में आगे बढ़ पाएंगे और ना ही भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान ने इन तीन श्लोकों में हमें बताया है 8th, 9th, 10th में कि भोजन भी सतो, रजो और तमो तीन प्रकार का होता है। तो हम सबको भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम सबको सिंपल खाना, सात्विक खाना, फ्रेश खाना खाना चाहिए, और उस फ्रेश खाने को भी हमें भोग लगाकर हम खाएं तो ऐसा भोजन दिव्य प्रसाद बन जाता है। उस भोग लगे भोजन को ग्रहण करने से हम लोगों में, हमारी फैमिली की कॉन्शियसनेस में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो अगर आप करोगे, आप 2-3 महीने अगर आपने ये कर लिया ना कि शुद्ध सात्विक भोजन आपने किया और आप उस खाने को 2-3 बार भोग लगाया, है ना, और उस खाने को अपने सारे खाने में फिर मिक्स करके पूरे परिवार को अगर आप खिलाना शुरू हो गए तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे फ्रेंड्स कि सब लोगों की कॉन्शियसनेस में बदलाव आना शुरू हो जाता है ना। तो ये चेंजेस आती धीरे धीरे। हम बोले कि आज ही सब कुछ हो जाए, आज मैंने भगवद गीता पढ़ी, आज ही मैंने भोग लगाया और आज ही मैंने प्रसाद दिया सबको तो आज सब कुछ हो जाएगा, तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। इतने सालों से हमने अंदर इतना कुछ रखा हुआ है तो इतनी जल्दी थोड़ी वो सब चेंज हो जाता है ना, टाइम लगता है। तो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ ये सोच लेना कम से कम 3 महीने मुझे ये एक्टिविटी करनी है तो बदलाव आपके सामने आएगा, है ना। धीरे धीरे आएंगी चेंजेस लेकिन 100% आती है। फिर हमने 11th वर्ष किया। 11th वर्ष में हमने 11th, 12th and 13th में मतलब यज्ञ के 3 प्रकार है, लेकिन अभी हमने 11th वर्ष में सात्विक यज्ञ के बारे में हमने समझा। तो अब हम फेथ की बात कर चुके हैं, फूड की बात हमने कर ली हुई है। तो 11th वर्ष में हमने सेक्रीफाइस को समझा था, यज्ञ को समझा था। यज्ञ मतलब कोई भी ऐसा कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से किया जाए तो वो तभी सात्विक होगा जब उसमें एक्सपेक्टेशंस ना हो, फलों की इच्छा ना हो। मतलब हर तरह का कार्य जो एक मनुष्य कर रहा है ना, जो हम लोग कर रहे हैं, यदि उसको भगवान की सेवा के भाव से किया जाए, शुद्ध मन से किया जा रहा है कि मुझे भगवान ने सेवा दी है तो मुझे उसको बेस्ट वे में कर, तो वो यज्ञ है। तो इस श्लोक में भगवान सात्विक यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि सात्विक यज्ञ क्या है। जब सात्विक गुण किसी का प्रधान होगा, वैसा जो इंडिविजुअल है ना, जो व्यक्ति है, वो अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है ना, वो सबको यज्ञ रूप में करने वाला है। वो 2 टाइम की भक्ति वाले कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ चुका होगा। जैसे अभी जो बिल्कुल ही भक्ति नहीं करते उसको क्या रिकमेंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम पहले कि भाई चलो तुम आओ पहले भगवान को प्रणाम करो, जोत वगैरह धूप वगैरह जलाओ, है ना, 2 बार कर सकते हो, 2 बार करो, है ना। जो बिल्कुल नहीं करता पहले वहां पे आना होता है। लेकिन फ्रेंड्स भक्ति का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म नहीं होता। मतलब यज्ञ रूप में कर्म हम तब कर पाएंगे जब हम अपनी सारी जो भी हमारी ड्यूटीज हैं घर की बाहर, उसको हम इस तरह से करें कि भगवान ने मुझे सेवा दी है, बच्चे दिए हैं, फैमिली दी है, तो मुझे उनकी सेवा करनी है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। वो अपनी ड्यूटीज को स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग समझकर, जो भी हमें भगवद गीता में बताया जा रहा है कि क्या मेरी ड्यूटीज हैं, कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मुझे क्या ड्यूटीज करनी चाहिए, है ना, और अपनी ड्यूटीज को इस तरह से करना कि भगवान को मैं खुश कर सकूं, इस तरह से करें कि उसमें फल की इच्छा ना हो। इस तरह की एक्टिविटीज अगर कोई कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। और अब नेक्स्ट वर्स में हम समझने वाले हैं कि रास्तिक यज्ञ कैसे होता है ना। तो नीना जी आप पढ़ लो, 12th वर्स पढ़ना है हमने, 12वां। हरि बोल।
हरि हरि बोल एवरीवन। श्लोक नंबर 12। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, श्लोक नंबर 12। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स सात्विक यज्ञ हमने समझ लिया, तो इस श्लोक में हम समझने वाले हैं राजसिक यज्ञ कैसा होता है। राजसिक में फ्रेंड्स देखो बेसिकली 2 चीजें आती हैं, गर्व घमंड जिसको बोलते हैं और भौतिक लाभ, इच्छाएं भी बोल सकते हैं इसको, फल की इच्छा, है ना। मतलब ये यज्ञ मटेरियल चीजों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब जब यज्ञ किसी फायदे की भावना से किया जाए जिसमें भौतिक लाभ की आकांक्षा हो। देखो फ्रेंड्स सात्विक में भी लाभ की आकांक्षा हो सकती है, है ना, कि उसमें क्या आकांक्षा होती है कि भगवान मुझे अपनी शुद्ध भक्ति दो, मुझे शुद्धि मिले, मेरे विचारों में शुद्धि आए। वैसे लाभ को हम फ्रेंड्स भौतिक नहीं कहते, वैसा जो लाभ है वो आध्यात्मिक है। जब रास्तिक यज्ञ में कोई भौतिक लाभ ढूंढ रहा होगा ना कि भगवान मुझे पैसा मिल जाए या मुझे चीजें मिल जाए, मुझे नेम फेम मिल जाए, है ना, मतलब मटेरियल चीजों को पाने के चक्कर में कोई भगवान से उस भाव से कुछ मांगने के चक्कर में कोई यज्ञ करेगा, तो वो यज्ञ कौन सा होता है? रास्क यज्ञ। और रास्क यज्ञ तब भी होता है जब हम उसे बहुत घमंड से करते हैं और कहते भी हैं, 100 जगह हम कहेंगे कि हम कितने अच्छे हैं, देखो हमने यज्ञ किया, हमने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया। तो बाहर से तो लग सकता है कि सब कुछ परफेक्ट है, बहुत पूजा पाठ वाले लोग हैं ये, है ना, लेकिन अंदर से फ्रेंड्स है ना, भक्ति होती है इंटेंशन से, आपकी अंदर की इंटेंशन क्या है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं ना। अंदर से अगर आपने घमंड किया तो वो यज्ञ रास्तिक हो जाएगा ना? देखो फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है ना, तो वो क्या सोच रहा है कि मैं भगवान के साथ अपना रिश्ता स्ट्रोंग करता हूँ ताकि मुझे फायदा हो जाए, है ना, मुझे मटेरियल चीजें मिल जाए, मुझे बेटा हो जाए, या कोई भी मटेरियल जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो हम इसलिए मंदिर जा रहे हैं कि मेरे को फायदा हो जाए। और जब फायदा हो जाता है फिर हम मंदिर जाना बंद कर देते हैं। तो उसको जब मटेरियल गेन हो रहा है, एक व्यक्ति को मतलब कुछ बहुत कुछ मिल रहा है ना, और उसको और आगे बढ़ाने के लिए, अपने नेम फेम को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो प्रभु से रिश्ता बनाता है ना। और कई बार हम लोग देखते हैं ना कि कई लोग बहुत मतलब हाई फाई तरीके से यज्ञ करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर फ्रेंड्स बहुत घमंड होता है कई बार, है ना, हर जगह की बात नहीं हो रही है, मतलब कई बार उनके अंदर बहुत घमंड होता है कि देखो जी हमने कितना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करवाया, हमने कितने लोगों को खाना खिलाया, है ना, इससे ज्यादा तो इस पूरी सोसाइटी में इतना बड़ा कुछ किसी ने नहीं किया होगा। और अगर हम ऐसा करेंगे, है ना, इस धार्मिक अनुष्ठान में हम चलो किसी सिंगर को बुला लेते हैं, भजन सुनेंगे, है ना, लोगों को दिखाने के लिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज दिखने में बाहरी रूप से तो डिवोशनल दिखेंगी, लेकिन अगर उसमें अभिमान है, घमंड है, अहंकार है कि देखो जी मैं कितना अच्छा कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना, तो अगर उसमें ये इंटेंशन है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है उसका रास्तिक गुण बढ़ा हुआ है, है ना। उसका मेन लक्ष्य भगवान को खुश करना नहीं है बल्कि अपने नेम फेम को बढ़ाना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लो उसमें रजोगुण प्रधान, और वो मटेरियल गेन के लिए या गर्ववश वो ऐसा कर रहा है। हमने चैप्टर 14 में प्रकृति के 3 गुण में भी पढ़ा था कि जब कोई अहंकार से या लोभ के कारण अगर कोई कर्म करेगा तो उसका रिजल्ट दुख में बदल जाएगा, है ना। और ये हम समझ चुके हैं कि जो रासिक गुण होता है, जो उसमें पहले तो आनंद आता है लेकिन बाद में उसका फल हमें दुख के रूप में लेना पड़ता है, क्योंकि उसका रिजल्ट टेम्परेरी मिलेगा, बाद में उसको कष्ट मिलेगा, इससे हमें बचना है। मतलब हमें फ्रेंड्स लोगों को दिखाने वाले एटीट्यूड होता है ना जो हम फ्रेंड, उससे हमें सच में बचना। देखो सिंपल बात है, भगवान हमें अंदर से जानते हैं, हम अंदर से कैसे हैं। देखो अगर हम फाइनेंशियली इतना ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, है ना, तो अगर हम इतना लैविश तरीके से हम कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवा सकते, है ना, तो हमें गिल्ट में नहीं उसके लिए चक्कर में चले जाना है कि नहीं नहीं भगवान तो उनसे खुश होते हैं जो बहुत हाई फाई तरीके से पूजा अर्चना जो करवाते हैं या यज्ञ करवाते हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे भाव का भूखा हूँ, है ना, तुम छोटे बच्चों को खाना ही खिला देते हो, हलवा पूरी खिला देते हो तो मैं उससे भी खुश हो जाता हूँ, थोड़ी सी किसी की हेल्प ही कर देते हो तो मैं उससे ही खुश हो जाता हूँ। मतलब भगवान हमारे पैसों से खुश नहीं होते, अरे भगवान ने तो हमें दिया है सब कुछ, तो वो क्या खुश होंगे जब हम उनकी दी हुई चीज को उनको ही अर्पित करते हैं, तो क्या खुश होते हैं वो हमारे भाव के भूखे हैं, अंदर इंटेंशनली हम क्या करते हैं उनके लिए भगवान वो देखते हैं ना, कितनी मेहनत कोई कर रहा है उनके साथ, इंटरनली उनके साथ कनेक्ट होने के लिए भगवान उसको देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप लाखों रुपए मुझे चढ़ा रहे हो लेकिन आप उसमें आप अपना प्रभाव दिखाना चाह रहे हो दूसरों को, है ना, तो भगवान उससे कभी भी खुश नहीं होंगे। तो अगर हम इस तरह की बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं भगवान के साथ तो हमें उसको अवॉइड कर देना है। पहले हमें ज्ञान नहीं था लेकिन अब हमें भगवद गीता के माध्यम से भगवान क्लियरली हमें बता रहे हैं कि भाई मैं खुश नहीं होता इन चीजों से, है ना, मैं खुश होता हूँ कि तुम भाव से, अगर ये चीजें तुम सिंपल देखो उसमें भाव जोड़ देना, अगर आप कर रहे हो, आप कर सकते हो लाविश तरीके से कोई यज्ञ कोई धार्मिक अनुष्ठान तो करो, लेकिन उसमें भाव क्या रखना है कि मैं प्रभु को खुश कर रही हूँ, है ना, मैं प्रभु ने मुझे इतना कैपेबल किया है कि मैं खिला सकती हूँ खाना, मैं नहीं खिला रही हूँ, मेरी तो कुछ औकात नहीं है, ये प्रभु ही कर रहे हैं, है ना, प्रभु चाहते हैं कि सब लोग खाना खाएं, है ना, या मैं कोई धार्मिक अनुष्ठान करूं, ये प्रभु की इच्छा है ना। तो अगर हम इस तरीके से अगर हम करें तो वो यज्ञ सात्विक यज्ञ में काउंट हो। तो भगवान इस सृष्टि के रचयिता है, पालक है, वो सुप्रीम है, और हम सब उनके सेवक हैं, वो हमारे सेवक नहीं है कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ईश्वरीय शक्तियों को अपनी डिमांड्स पूरी करने का केंद्र समझते हैं और फिर एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी मांगने लग जाते हैं और जब पूरी नहीं होती है फिर हम उनको कोसने लग जाते हैं। देखो, सोचा कभी कितना ज्यादा हम अच्छे लोग हैं, फिर हम अपने आप को सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा अच्छा कोई नहीं है, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, हम दूसरे लोग ही मुझसे बुरा करते हैं या भगवान मुझसे इतना बुरा करते हैं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स। अरे, भगवान को कोसने में हम एक मिनट नहीं लगाते, है ना। देखो, भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं लेकिन हमें कर्म भी उस तरीके से करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम राइटिस चीजें करते रहेंगे ना, बस हमने सोच लिया माइंड में जो भी करना भाई सही कर, खत्म हो गया पुरानी लाइफ मेरी, स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया वहां पे, मुझे अब जो भगवत गीता में बोला जा रहा है मुझे वैसे ही लाइफ लीड करनी है अपनी, चाहे किसी को अच्छा लगता है चाहे किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने आप को खुश करना है, मेरी कॉन्शियसनेस को मुझे ऊपर लेकर जाना है ना, मैंने अपनी आत्म उन्नति करनी है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने कर्मों को सही डायरेक्शन में करना। कर्म करना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, कर्मों को सही डायरेक्शन में करना इज इम्पोर्टेंट। तो अगर हम इस तरह से कर रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अगर हम कोई यज्ञ करते हैं तो समझ लो हमारा राशि गुण प्रधान है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो नीना जी, 13 पढ़ना हमने, है ना, मैंने भेजे थे श्लोक उसमें से भेज पढ़ना।
हरी हरी बोल जी। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरित किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, श्लोक नंबर 30। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरित किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो अब इस वर्ष में तामसिक यज्ञ की बात हुई है। फ्रेंड, देखो, तमोगुण में एक व्यक्ति, ना आपने पढ़े थे प्रकृति के 3 गुण, है ना, तो हमने उसमें समझा था कि तमोगुण में एक व्यक्ति सतोगुण से बिल्कुल उल्टा चलता है। अगर शास्त्र हमें कुछ बता रहे हैं तो तमोगुण वाले व्यक्ति उसको बिल्कुल नहीं मानते, मतलब जो बातें हमें हमारे स्क्रिप्चर हमें भगवान बता रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा करना, ये तामसिकता की निशानी है, सबसे बड़ी बात है ना। वो क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं होता, ये जीवन मिला हुआ है तो खाओ पियो ऐश करो, मतलब इस टेंडेंसी पे चलते हैं वो लोग, मतलब इसके ऊपर से वो कुछ नहीं सोचते कि जीवन मिला तो भाई खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलते हैं या जिन्होंने सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो किया, तो फ्रेंड्स क्या वो लोग ऐश नहीं करते, वो ज्यादा ऐश करते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल लीड करते हैं। लेकिन उनको क्या लगता है कि नहीं नहीं जो हम कर रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं। तो जो अगर इस तरह से कोई लाइफ लीड करता है तो फ्रेंड समझ लो उसमें तामसिक गुण प्रधान है ना। देखो, जिस फॉरेन लाइफस्टाइल की तरफ हम अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, हमें क्या लगता है यार कितनी बढ़िया जिंदगी है और हम भी बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करते हैं, है ना। फॉरेन लाइफस्टाइल ले लो या बॉलीवुड को ले लो, है ना, वहां पे हीरो हीरोइंस को हम फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उनसे कोई लेना देना नहीं है हमें, लेकिन उनकी जो बाहरी जिंदगी है उनसे हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। उनका नेचर कैसा है, वो अपने घर में कैसे रहते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी बाहरी लाइफ से हम बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ध्यान से देखो उनकी जिंदगी, तो मटेरियली तो वो चाहे सक्सेसफुल होंगे लेकिन वेस्टर्न लाइफस्टाइल टोटल तामसिक गुण की तरफ इशारा देता है। फ्रेंड्स, फैमिली कल्चर बहुत लिमिटेड है वहां पे, मैरिजेस जल्दी टूट जाती हैं, है ना, और सबसे ज्यादा इससे बच्चे सफर करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हम सबको पता है ना कि जहाँ पे मैरिजेस टूट जाती हैं तो वहां पे बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अगर शादी टूटी तो दोनों ही, फ्रेंड्स वेस्टर्न कल्चर में ज्यादातर दोनों ही शादी कर लेते हैं, फिर क्या होता है, सिंपल बच्चे सफर करते हैं, फिर वो एक दो शादियां नहीं करते, बहुत ज्यादा शादियां करते हैं। और कई जगह तो वहां पे मैरिज का ही कोई कल्चर नहीं, लोग अपने पार्टनर के साथ रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में लेकिन मैरिज वगैरह नहीं करते। और इंडिया में भी देखो आप, खासकर यहाँ पे इस मतलब इस साइड बॉम्बे पुणे साइड ये वाला कल्चर बहुत फेमस हो रहा है, नॉर्थ में भी हो रहा है लेकिन इधर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है वेस्टर्न कल्चर को, हम क्योंकि हम अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो लोग फ्री रहना चाहते हैं, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, है ना। तो ऐसे ही लाइफस्टाइल हम भी फॉलो कर रहे हैं। इस पूरे लाइफस्टाइल में भगवान से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी या किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी का ना होना सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करना कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके, ये क्राइटेरिया रहता है। तो ऐसा लाइफस्टाइल लीड करना तामसिक प्रवृत्ति है फ्रेंड्स। तो भगवान की हमें असीम कृपा माननी है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं, या यहाँ पे हम भूलना भी चाहे ना भगवान को, तो हमें कोई ना कोई माध्यम मिल ही जाता है ना, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ये सब एटमॉस्फेयर देखा हुआ है ना। और अगर मैरिज भी हमारी इधर हो जाती है तो हम लोग उसी एटमॉस्फेयर को जी रहे होते हैं। और घर में बर्थडेज वगैरह हो हमारे इंडियन फैमिलीज में, तो क्या होता है, हम लोग पूजा हवन वगैरह करवाते हैं, है ना, या हम किसी के घर कोई पूजा हवन अटेंड करते रहते हैं, तो मंत्रों के द्वारा हम फिर से भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी भगवद गीता पढ़ रहे हैं हम, तो हम लोग कहाँ कहाँ से लोग, पूरे इंडिया से, कोई हिमाचल से है, कोई जम्मू से है, है ना, कोई पुणे से है, तो अलग अलग जगह से हम लोग भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से। फिर मंदिर गुरुद्वारा में आते जाते हमारा ध्यान चला जाता है ना। तो यहाँ हम फिर भी सेफ हैं, लेकिन और बेटर करना है हमें अपने स्क्रिप्चर्स पढ़कर, हमें सत्संग साधना सेवा सदाचार से जुड़ा रहना है ना। अगर ना जुड़े हम तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है। अभी अगर हम स्क्रिप्चर्स ना पढ़े होते है ना, तो अपना पुराना लाइफस्टाइल देखो, अपने मन की दशा सोचो, और आज अपने मन को कंपेयर करो, है ना, और कुछ मत देखो। आप बाहर से आपको कुछ फील नहीं होगा फ्रेंड्स कि बाहर से आप बदले हो या नहीं बदले हो। आपने ये नहीं देखना आपको कोई बोल रहा है कि आप बदल गए हो या नहीं, है ना, कोई भी नहीं हमें बोलने वाला कि आप बहुत बदल गए हो, आप में चेंजेस आई हैं, है ना फ्रेंड्स। आपको लगता है हमें कोई अप्रिशिएट करेगा? कोई भी अप्रिशिएट नहीं करने वाला है, हमें खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने मन की दशा से अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि पहले जब मैं सत्संग नहीं करती थी, इसमें इन्वॉल्व नहीं थी 2-3 साल पहले, तो मैं क्या सोचती रहती थी, अब मैं सत्संग करती हूँ 2 साल से रेगुलर हूँ, तो मेरे मन का क्या दशा है ना, अब मेरा मन किस दिशा में जाता है, सात्विकता में जाता है, रास्तिक गुण में जाता है या तामसिक गुण में जाता है ना। तो अगर हम प्रभु के साथ नहीं जुड़े तो क्या होगा, फिर हम समझ लो हम लोग तामसिकता की तरह बढ़ते जाएंगे। मतलब फ्रेंड सिंपल बात है कि तमोगुण में श्रद्धा, वास्तव में श्रद्धा है ही नहीं, होती नहीं है श्रद्धा तमोगुण की। मतलब अगर हमने शास्त्रों को बिना समझे यज्ञ किया, इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि अगर हमने शास्त्रों को बिना समझे यज्ञ किया तो वो तामसी यज्ञ है। तो जब भी अगर हम यज्ञ करें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यज्ञ में प्रसाद वितरण वगैरह तो होना ही चाहिए, भगवान को भोग लगा के सबको प्रसाद बांटना चाहिए, है ना। जब भी कोई यज्ञ हो रहा है तो क्या करना है, भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद जो वहां पे जो भी अतिथि आए हैं, पंडित आए हैं, है ना, उनको रिस्पेक्टफुली प्रसाद बांटा जाना चाहिए, है ना। वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, पुरोहितों को दक्षिणा देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। कई बार हम देख लेते हैं ना कि देखा देखी में लोग करवा तो लेते हैं यज्ञ या यज्ञ या कोई भी पूजा अर्चना, लेकिन उनमें बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं होती। मतलब कई बार नास्तिक लोग भी यज्ञ वगैरह करवाते हैं ये सोच के, चलो चलो यार मेरे को किसी ने कुछ बोला है, मेरी वाइफ बोल रही है या मेरे फ्रेंड ने बोला है, तो चलो मैं कर लेता हूँ, शायद कुछ बढ़िया हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो श्रद्धा के बिना यज्ञ तामसिक है, और आजकल ज्यादातर जो यज्ञ कौन से हो रहे हैं, तामसिक और रास्तिक ही यज्ञ हो रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, सात्विक यज्ञ बहुत कम हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो अतिथि वगैरह आते हैं, पंडित आते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली प्रसाद बांटा जाना चाहिए, पुरोहितों को दक्षिणा देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कौन सा यज्ञ हम कर रहे हैं, तामसिक है। अगर वैदिक मंत्र जाप नहीं हो रहा है, वैदिक मंत्र शुद्धि के लिए और ईश्वर को खुश करने के लिए होता है फ्रेंड्स, है ना, अगर वैसा ना किया जाए तो यज्ञ कौन सा है, तामसिक है। जो पुरोहित वहां आए हैं अगर उनको दान दक्षिणा ना दी जाए तो भी तामसिक यज्ञ है। और जो यज्ञ करवा रहा है उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, इग्नोरेंस में है वो व्यक्ति, है ना, और वो इस भाव से यज्ञ करवा रहा है कि उसमें श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा के बिना तो हम किसी भी तरह भगवान को खुश नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा यज्ञ जिसमें शास्त्रों को फॉलो नहीं किया जाता, इग्नोरेंस में किया जाता है, अंधकार में किया जाता है यज्ञ, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है फ्रेंड्स, वैसा यज्ञ तामसिक है। मतलब ये है कि इस श्लोक का कि कभी कभी लोग ना देवी देवता की पूजा, आपने भी देखा होगा कि किसी चीज की प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अगर धन प्राप्त भी हो जाता है तो इस धन को शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके अपने ऐशो आरामों में, गलत चीजों में, उसमें खर्च कर देते हैं। तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को, ऐसे धार्मिक यज्ञों को सात्विक नहीं माना जाता। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कैसे होते हैं, यज्ञ कैसे होते हैं, वो तामसी होते हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ष में कलम समझने वाले कलम समझेंगे कि भगवान ने तपस्या के भी तीन प्रकार बताए हैं, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। मतलब बहुत ही सुंदर है ये तीनों ही वर्सेस। तो शरीर की तपस्या पे कल हम बात करने वाले हैं, अगर टाइम मिला तो वाणी की तपस्या पे भी कर लेंगे, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल अर्चिपन जी। मनोज, आपका सत्संग बहुत ही दिव्य और बहुत ही आनंददायक रहा। आपने बड़े अच्छे से हमें ये दोनों वर्सेस करवाए और हम श्रद्धा के तीन विभाग ये चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये समझा कि हाँ, मतलब जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो जो है वो हमारी चॉइस पर निर्भर करता है कि हम, यानी हमारी श्रद्धा किस प्रकार की है ये हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। तो आज जब हमने राजसिक यज्ञ के बारे में समझा तो मेरी इससे ये लर्निंग्स बनी है कि जब हम कोई यज्ञ मैं के भाव से या केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं तो वो यज्ञ जो है राजसी कहलाता है। जैसे कि हमने अक्सर ये देखा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो भी कोई MLA की पोस्ट के लिए या किसी बड़े पद के लिए चुनाव में अपना आवेदन पत्र देते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो बगलामुखी माता या फिर कांगड़ा माता हवन कराने जाते हैं। मैंने ये बड़ा नजदीक से देखा है। तो ये फिर जब राजनेता मतलब बनने के लिए वो जो ये यज्ञ करवा रहे हैं तो ये यज्ञ जो है ये एक प्रकार का राजसिक यज्ञ हुआ क्योंकि इसमें उनकी अपनी इच्छा छुपी हुई है। वो प्रभु से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी केवल और केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस यज्ञ को करवा रहे हैं। उनमें मतलब जो है प्रभु के प्रति मतलब प्योर उनकी भाव, प्योर भाव नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमने ये समझा कि हमें राजसिक यज्ञ से उठकर सात्विक जो भी यज्ञ करने हैं उसमें हमारा भाव प्योर होना चाहिए और केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही हमें यज्ञ करने हैं। और एक हमने तामसिक यज्ञ के बारे में समझा। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अब भगवद गीता पढ़ के हमने ये जाना ही है कि तमोगुण में जो है हमारी जो बुद्धि होती है वो तो बिल्कुल निम्न स्तर की होगी होती है। हमें केवल अपने 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 बारे में ही हम अनुभव नहीं कर पाते कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। तो मतलब जब तामसिक गुण के अधीन जो व्यक्ति तामसिक यज्ञ करते हैं तो कई बार ये देखा जाता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कड़वा हवन करते हैं कई लोग। यहाँ तक मतलब उनकी उनमें इस प्रकार की भावना आ जाती है कि वो मतलब दूसरे व्यक्ति को या समझो अपना बदला लेने के लिए इस प्रकार के हवन भी करवाते हैं। तो हमने अब ये समझा है कि हमें इस प्रकार का कुछ भी नहीं करना है जिससे कि प्रभु खुश ना हो, क्योंकि हमें केवल और केवल जो है प्रभु को खुश करना है। और फ्रेंड्स, हमने ये समझा कि भगवद गीता में हमने ये पढ़ा कि प्रभु अपने उन्हीं भक्तों से प्रसन्न होते हैं जिनका भाव शुद्ध होता है। और प्रभु के लिए तो अगर हम एक फूल भी अर्पित कर देते हैं तो भी प्रभु हमारे से प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस हमें अपने अंदर प्योरिटी लानी है और केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही हमें यज्ञ करने हैं और अपने सारे अपने जीवन के कर्म इस प्रकार से करने हैं कि उन्हें हम यज्ञ बना सकें। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज नीना जी। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने दोनों श्लोकों को अच्छे से रिवाइज कर दिया है ना। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें अपने बारे में नहीं पता होता तो हम चले होते हैं दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। हमारा फुल फोकस कहाँ पर रहता है, हमारा अपने से हटके फुल फोकस हमारा ना दूसरों की जिंदगी में होता है। इसलिए हम अपने लाइफ की चीजों को ठीक करने में हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर क्या चल रहा है, मुझे किन किन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है ना। मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है या मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है या मेरी फैमिली हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझे कहाँ पे काम करने की जरूरत है। कि हम पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं दूसरों की बातों में, दूसरों की लाइफ के बारे में है ना, तो हमारे पास टाइम कहाँ बचता है फिर, जब हम अपने बारे में कुछ कर सकें, कुछ जान सके अपने बारे में, अपने सेल्फ के बारे में नहीं पता होता तो हमने दूसरों के बारे में तो क्या ही हमने जानना है। तो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें सबसे ज्यादा जो मैंने देखा इस रास्ते में फ्रेंड्स कि सेल्फ हेल्प सबसे जरूरी है। पहले अपनी हेल्प करो, पहले अपने आप को उच्च स्तर में लेकर चलो, अपनी हर चीज को जो जहां जहां पे हम लैग करते हैं, जहां जहां पे हम तामसिक गुण में अटके हुए हैं है ना, या राजसिक गुण में, हमें वहां वहां से परसेंटेज में उठना है ना, अपने गुणों को इनहेंस करते जाना है, डिवाइन क्वालिटीज को, और हमें धीरे धीरे हमें कहाँ जाना है, डिवाइन क्वालिटीज की तरफ जाना है, अपने दिव्य गुणों की तरफ बढ़ना है ना, ताकि हम अपनी भी हेल्प कर सके और हम दूसरों की भी हम अच्छे से फिर हेल्प कर पाते है ना। तो थैंक यू सो मच नीना जी। हाँ जी, कोई और आज अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है? हरी बोल।
हरी हरी बोल।
हाँ जी ममता जी, आप बात कर लो।
थैंक यू मुना जी, आज के जो भी आपने हमें दो वर्ड्स कराए, बहुत ही दिव्य और डिवाइन, बहुत ही अच्छी तरह से समझाए हमें, राजसिक और तामसिक यज्ञ के बारे में बताया। तो जब हम पहले भगवत गीता नहीं पढ़ते थे तो हम भगवान के पास मांगने ही जाते थे कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, वो लिस्ट आपने भी कई बार हमें बताया कि लिस्ट लेके जाते थे, तो तब हमें इतना पता नहीं था कि भगवान हमें करते थे हमारी इच्छाएं पूरी, है नहीं है। जब हम दुखी होकर ज्यादा जाते थे तो वो लगता था कि जो दुख है वो भी हमें भगवान ने दिया है। तो अब जब हम भगवद गीता से जुड़े हैं, आपके माध्यम से जो भी हम सीख पा रहे हैं, जो भी अब एक्टिविटी कर रहे हैं, तो तब से हमें एक ऐसे अंदर से एक बोलते ना एक शांति मिली है, और जो सही काम करने के लिए हमें एक जो मोटिवेशन मिली है कि जब हम अपने कर्म सही दिशा में करते हैं ना, तो भगवान हमारी हर इच्छा, हर उसकी समस्या का भी हल निकालते हैं, हर इच्छा को भी पूरी करते हैं। क्योंकि जब हम हमें अच्छा करना या बुरा करना है हम पे डिपेंड, भगवत गीता पढ़ने की चॉइस अब जो ली ये हमने खुद ली, तो जब क्योंकि भगवत गीता पढ़ने के बाद ही हमें अंदर से एक भाव लाए हैं अपने अंदर, इधर से सीखा कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो एक भाव लाना है, कुछ भी हमने अपने आप को उन शरण में भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना अपना, उनको यही प्रार्थना की कि भगवान हम आपकी शरण में आए हैं। तो तामसिक और राजसिक यज्ञ नहीं करना है क्योंकि इसमें मेहनत नहीं होती है। जब हम भगवान अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के लिए लगाए रखते हैं, जैसे कि भगवान जी का श्रृंगार करना, उनको नहलाना, भगवान जी के मतलब स्वरूप को नहलाना दुलाना, उनको उनका श्रृंगार करना, उनके लिए फिर भोग के लिए तैयार करना, हर वक्त जब हम छोटी छोटी बातों के लिए सोचते हैं ना कि हम अपने भगवान जी के लिए अब ये करना है, कुछ भी चीज है, दिन का भोग, रात का भोग, अब उन्होंने दूध पीनी है, जैसे हम खाते हैं तो वैसे हम सबसे पहले उनको सब कुछ अर्पण करना जब शुरू किया तो हमारे अंदर वो भाव भी आया। और सच में जब हमने अपने मेहनत की उनके लिए, उनके कामों के लिए ज्यादा मेहनत की, तुम्हारी बुद्धि में भी जब वो एक विवेक जागा तो वो श्री हरि की वजह से ही है, वो देते हैं, उन्होंने दिया है। तो ये हम बातें पहले भूल चुके थे, सच में वही आप भी हमें कई बार बताते हैं कि हम भगवान से जो हम रिश्ता भूल गए थे, हमने उस भूले हुए रिश्ते को दोबारा से जगाया है, क्योंकि हम में हमारी कुछ भी नहीं है इसमें, ये श्री हरि की ही कृपा है जो हमें उन्होंने बुद्धि में विराजे हैं, उनके रास्ते उस रास्ते पर चले हैं। और मोना जी थैंक यू आपका भी कि आपने भी हमें एक इतनी अच्छी बातें समझा के एक प्योर भाव से हम उनकी तरफ चले हैं, और हर एक जो हमें डे टू डे लाइफ की जो ड्यूटीज है उसमें भी हम बिल्कुल एक प्योर भाव ला के चलते हैं कि नहीं ये भगवान जी की दी हुई ड्यूटी है। तो सच में तब से हमारे अंदर एक जो चिड़चिड़ापन रहता था कि हे हमें करना पड़ रहा है, वो वाला सब जो भाव एक अंदर से एक फीलिंग आती थी वो सब खत्म हो गई है। अब यही रहता है कि नहीं सच में ये भगवान जी की ड्यूटी है, क्या हमने हस्बैंड के लिए, क्या हमारे बच्चे हैं, क्या हमारी फैमिली है, कोई तो हम कोई सिंगल फैमिली में रहे, कोई जॉइंट फैमिली में रहे, जो भी हमें जो काम करना पड़ता है वो श्री हरि की कृपा से ही की वजह से कर पा रहे हैं, और उनकी दी हुई सेवा समझ के कर रहे हैं। तो तब से ने अंदर सच में एक बहुत ही अच्छी एक पीस, जैसे बोलते नहीं पहले जो मन में उथल पुथल रहती थी वो सब शांत हो गया। थैंक यू मोना जी आपका सत्संग सच में बहुत ही डिवाइन, बहुत ही डिवाइन। हरी हरी बोल। नीना जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से आज जो श्लोकों के बारे में बताया कि हम जब भगवान जाते हैं तो कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, हम उस माता से जाएंगे तो उधर से नहीं मिला तो कहीं और चले जाएंगे, शिव जी भगवान जी के पास चले जाएंगे, तो जैसे हम अलग अलग जगह पे जब मांगने जाते हैं तो वो सब चीज हम समझी कि नहीं ये सब राशिक और तामसिक लोगों का ही काम है, जो सात्विक गुणों की हमें तरफ चलना है तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी रास्ते में, जो हम करके देख रहे हैं कि हमें मेहनत का फल जो मिलता है, तो जो हमारी इच्छा नहीं भी पूरी होनी होती भगवान हमें वो भी दे रहे हैं। हरी हरी बोल मना जी, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स ममता जी। देखो फ्रेंड, सिंपल बात हमें ये समझना है कि जो भी सुख और दुख हमें मिलते हैं ना, जो भी आज हमारी सिचुएशन है, चाहे हम सुखी हैं चाहे हम दुखी हैं, या जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या सुख आते हैं, है ना, तो वो आते कहाँ से? आपने कभी ऑब्जर्व किया? ये हमारे ही फ्रेंड्स कर्मों का फल है, और कोई पुराने जन्मों का फल नहीं लगता मुझे तो। इसी जन्मों के फल मिलते हैं कि जो हमने इस जन्म में बोया होता है ना, जो बीज, वही पेड़ बनकर हमारे पास आता है। अगर हम देखो अमरूद का पेड़ बोएंगे तो अमरूद ही निकलेंगे ना उसमें से सेब थोड़ी आ जाएंगे, है ना। तो कभी भी ऑब्जर्व करना कि जो भी आज हमारी सिचुएशन है ना, वो जो हमने लाइफ में जो डिसीजंस लिए थे ना, है ना, जो चॉइस थी हमारे पास, उस चॉइस के कारण आज हमारी ये सिचुएशन है ना। भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि तुम देखो, भगवान हमें स्ट्रेंथ देते हैं, सिंपल बात। अगर हम भगवान के आदेशानुसार जो भी भगवान हमें कह रहे हैं भगवद गीता में, जो भी स्क्रिप्चर्स में भगवान ने हमें गाइड किया है, उसके अनुसार अगर हमें अपना जीवन जीते हैं ना, और भगवान देखो हमारे इंटेंशन देखते हैं, तो क्या चीज है जो भगवान पूरी नहीं कर सकते, है ना। वैसे तो हमारे जो चीजें हमें मिली है, सुख दुख हमें हमारे कर्मों की वजह से मिला है, लेकिन भगवान ने कहा है अपने कई श्लोकों में कि तुम जब मेरे पास आ जाते हो ना, है ना, जब तुम मेरी शरण ग्रहण कर लेते हो, तो मैं तुम्हारे सारे पिछले जो सारे पाप है उसको माफ कर देता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों को मतलब भगवान की शरण ग्रहण करने में भी प्रॉब्लम, हम जाएंगे नहीं, हम अपने जो मनोधर्म है ना उसमें घुसे रहेंगे। और मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स ये बात सीखी है कि अगर हमारे लाइफ में देखो किसी के लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और किसी के लाइफ में कम आती हैं, है ना, तो अगर किसी की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो और अगर वो भगवान की तरफ ज्यादा जुड़ जाता है ना, तो मुझे तो लगता है भगवान वो चुनते हैं ऐसे व्यक्ति को, है ना। भगवान की स्पेशल कृपा है कि भगवान पहले ही उसको लाइफ में सब कुछ दिखा देते हैं, मतलब सारी पास्ट और फ्यूचर सब दिखा देते हैं उसको कि भाई ये लाइफ थी तेरी, अब तेरी ये लाइफ है, और तू अगर ऐसे करेगा तो तेरी ये लाइफ होगी। मतलब जैसे होता है ना, अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है और हमें हर चीज पता लगने शुरू हो जाती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो अब उस अनुभव को ना, है ना, जो एक्सपीरियंस हमें हो रहे हैं भगवद गीता पढ़ के, है ना, जो हमारी प्रॉब्लम्स आ गई है लाइफ में बहुत ज्यादा आ जाती है ना, और उसको हम अनुभव या तो देखो एक अच्छा इंसान बनने के लिए कर सकते हैं उसको यूज, या फिर हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं कि यार मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, छोड़ो परे यार, वो मेरे साथ ऐसे करती है या करता है, तो मेरे को भी जीवन इस तरह से जीना है, मेरे को भी अपने जीवन बर्बाद ही करना है ना, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया तो मुझे भी अपनी जिंदगी अस्त व्यस्त कर लेनी है। तो हमें क्या करना है कि भाई या तो हम उस अनुभव को एक शिक्षा के रूप में लें कि हमें जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए आती है। तो हम अगर हम उस टाइम में भगवान पे विश्वास रखते हैं, हम जुड़े रहते हैं भगवान से, है ना, तो हम उस अनुभव को एक अच्छा इंसान बनने में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बजाय इसलिए कि हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर दें। क्योंकि किसी की भी फ्रेंड, सिंपल बात है, किसी की भी ऐसी औकात नहीं होनी चाहिए कि हमारी लाइफ को कोई अस्त व्यस्त कर दे। हम खुद ही कैपेबल है अपनी लाइफ को अस्त व्यस्त करने के लिए। हम खुद ही, जो हमारा मन है ना, हमें इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर देता है ना कि हम खुद ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो हमें इस तरह से अपनी लाइफ जीनी है कि मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती है जो मैं आपके सामने आज बोल रही हूँ, कि अगर हम लाइफ को राइटेस्ट वे में जीते हैं ना, तो भगवान भी भाई बंदे से क्या पूछते हैं कि बता भाई तेरी क्या रजा है, है ना। एक लाइन वो आपने भी सुनी होगी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब फिर इस सिचुएशन में आप आ जाते हो कि भगवान खुद ही पूछ रहे होते हैं भाई बता दे तू क्या चाहती है या चाहता है, है ना। मतलब इस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, भगवान हमारी इंटेंशन देख ले कि भाई कुछ भी हो जाए, मतलब भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, सिंपल बात है ना, और मुझे राइटेस्ट वे में ही जीवन जीना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो इस तरह से अगर हम विश्वास करेंगे, कोई चांस ही नहीं है कि कोई हमारी लाइफ, हमें लगता है ना कि किसी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद होगी या कुछ होगी, हम खुद ही बहुत कैपेबल है फ्रेंड्स अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। कभी सोचना है ना, कभी बैठना 10-15 मिनट अपने लिए सोचना, निकालना रात को सोने से पहले, तो हमें खुद ही अपनी गलतियां पता चल जाती है ना। थैंक यू सो मच ममता जी। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। ममता जी आज आपकी भजन के टर्न, आप भजन गा सकते हो। हरि बोल।
हाँ जी, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। आज भजन का टॉपिक है शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, चरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम है बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम है पुजारी। दया करो ए दयालु भग वन, प्रदान कर दो वो महान शक्ति, प्रदान कर दो वो महान शक्ति। भरो हमारे में वो ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो वो महान शक्ति। भरो हमारे में वो ज्ञान भक्ति, तभी काओगे ताप हारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सच में मोना जी, अब जब से भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जब कोई हम पे कोई क्वेश्चन करता है या कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो मन नहीं करता कि हम उसको दोबारा से जवाब दें, क्योंकि फिर एक मिनट यही ख्याल आ जाता है कि नहीं, हम तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, तो वो सामने वाला जो भी है, हमसे जो भी जैसा व्यवहार कर रहा है, वो तो इन बातों बातें कर ही नहीं रहा, वो पढ़ ही नहीं रहा, उसको वो ज्ञान तो मिल ही नहीं रहा। तो सच में एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी आपका।